ये है क्विंट हिंदी की खास पॉडकास्ट सर्विस और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, खबरों के डेली डोज के साथ मैं हूं शादाब मोईजी। छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई संवेदनशील मामलों में जांच सरकार की मनचाही दिशा में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया। वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सीवीसी और केंद्र दोनों ने रातों रात उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला कर लिया। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 4B के खिलाफ है। दरअसल सीबीआई में घूसकांड पर मचे घमासान के बीच मंगलवार आधी रात केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सभी अधिकार छीन लिए और दोनों को छुट्टी पर भेज दिया। साथ ही एम नागेश्वर राव को तत्काल अंतरिम डायरेक्टर बना दिया गया। काम संभालते ही नागेश्वर ने 9 अफसरों का तबादला कर दिया। सरकार ने तबादले पर सफाई भी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। सीबीआई के सीनियर अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की वजह से असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण हालात बन गए थे। एजेंसी की ईमानदारी और विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अपनी गलत कारनामों को छिपाने के लिए सरकार ने असंवैधानिक तौर पर सीबीआई डायरेक्टर को हटाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। सीबीआई में चल रहे उठापटक के बीच अपनी ही सरकार पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आलोक वर्मा के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आलोक वर्मा जैसे एक ईमानदार व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही स्वामी ने अपनी सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, सीबीआई के बाद अगला नंबर ईडी के अधिकारियों का होगा। ये लोग ईडी के राजेश्वर को हटाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई वजह नहीं बचेगी। मेरी सरकार ही भ्रष्ट लोगों को बचा रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मुकदमे दायर किए हैं सब वापस ले लूंगा। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है। और अगर आप भी कार बाइक खरीदने वाले हैं तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बार जरूर सुन लें। कोर्ट ने कह दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से देश में भारत स्टेज मतलब BS4 गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। साथ ही सिर्फ BS6 मानक वाली गाड़ियां ही बिकेंगी। BS का मतलब है भारत स्टेज और ये एमिशन नॉर्म्स हैं, मतलब गाड़ियां कितना प्रदूषण फैलाती हैं इसको नापने के लिए भारत स्टेज नाम का एक स्केल बनाया गया है। BS के आगे जो संख्या है 2, 3, 4 या 6, उसके बढ़ते जाने का मतलब है एमिशन के बेहतर मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। मीटू कैंपेन को देखते हुए सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्र सरकार ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। ये मंत्री समूह गठन के 3 महीने के अंदर वर्कप्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की समीक्षा करेगा और मौजूदा प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई की सिफारिश करेगा। बता दें कि देश में मीटू कैंपेन के तहत कई महिलाओं ने ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जिन्होंने वर्कप्लेस पर उनका उत्पीड़न किया था। संपादक रहे विदेश राज्य मंत्री MG अकबर को भी इन्हीं आरोपों के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके खिलाफ उनकी कई पूर्व सहकर्मियों ने आरोप लगाए थे। अब बात खेल की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच रोमांचक मोड़ पर टाई हो गया। वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे और उनके बल्लेबाज शाई होप ने उस गेंद पर चौका जड़कर मैच टाई कर दिया। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 321 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लेकिन जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने भी 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 321 रन बना लिए और मैच टाई हो गया। विराट कोहली की कप्तानी में भारत का यह पहला टाई मैच है। कप्तान विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 157 रन बनाए। कोहली का यह वनडे में 37वां शतक है। साथ ही सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर कोहली वनडे में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप हमें hindi@theqint.com पर लिख सकते हैं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।